أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا. तो क्लास का लेक्चर शुरू करने से पहले एक बात याद दिहाने की खातिर कि ये जो हमारा हमारी क्लास है ये एक वन साइडेड बयान नहीं है, ठीक है। जैसे कि कोई मजलिस होती है तो उसमें बयान होता है ना, तो उसमें कोई सवाल जवाब का सिलसिला नहीं होता, वो सिर्फ एक वन साइडेड चीज होती है ना, सिर्फ मुकर्रर जो है वो बयान कर रहे होते हैं और सवाल जवाब अगर करने भी हैं तो वो खत्म होने के बाद किए जाते हैं। तो हम इस तरह का एक बयान भी रख सकते थे, हमारे पास मिक्स एल आर की फैसिलिटी है जिसके ऊपर लाइव बयान होते हैं, लेकिन ये हमने जूम क्लास के अंदर क्यों किया है जो जिसके अंदर के एक इंटरैक्टिव ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, उसी के क्या है कि आप उसके अंदर सवाल भी करें, ठीक है, और कुछ आपकी फीडबैक भी साथ साथ चलती रहे। तो इस फैसिलिटी को सहूलत को हमें इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद फिर ये के कल जो हमारी बात चल रही थी वो इस वाक्य के ऊपर थी कि जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने तीन नबी इस बस्ती में भेजे, उन्होंने आकर के इन बस्ती वालों को अल्लाह का पैगाम दिया, तौहीद के बारे में बताया, शिर्क से तौबा करने की आवती, तो उन लोगों ने इन रसूलों की बात मानने से इनकार कर दिया। फिर अल्लाह ताला ने इनका पूरा मुकालमा यहाँ पर जिक्र किया है, ठीक है। तो ये मुकालमा जो है यानी टू साइडेड है कि रसूलों ने लोगों को कुछ कहा, फिर लोगों ने आगे से जवाब दिया, ठीक है। तो इस मुकालमे के अंदर ना बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हमारे सामने आती हैं, तो उनमें से एक चीज तो ये थी, थोड़ा होल्ड कीजिएगा। यानी बस्ती वालों ने तो इनकार किया, तो उसके बाद मामला ये हुआ कि एक अल्लाह के वली थे, नबी नहीं थे वली थे, ठीक है, जिन्होंने इन नबियों की बात का इकरार किया। तो उनको जब खबर मिली कि मुकालमा चल रहा है एक मुकाम पर, तो वो दौड़ते हुए आए और उन्होंने आकर के इसमें अपने लोगों से बात शुरू करी और उन्होंने फिर इनको समझाया, ठीक है। तो उन्होंने समझाने के लिए कुछ दलीलें इस्तेमाल करी, तो वो दलीलें जो थी ना वो दो किस्म की थी, यानी अकली और नकली दलीलें, ठीक है। ये अकली और नकली दलील क्या होती है इसके ऊपर हम अभी आते हैं। पहले उन्होंने ये कहा कि इत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अजरन वहुम मुहतदून, कि तुम उन लोगों की इत्तबा करो कि जो कि तुमसे कोई अजर नहीं मांगते, ठीक है। तो ये अजर ना मांगना जो है ना ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज होती है हिदायत की तबलीग में, ठीक है, कि ये जो खैरख्वाह लोग होते हैं, ठीक है, अल्लाह ताला की तरफ से वो लोगों की हिदायत के लिए महफूज किए जाते हैं, तो वो जब लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते हैं ना तो उनकी बात के अंदर में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट उनका ये होता है कि देखो हम तुम्हें जो बुला रहे हैं तो हम तुमसे कोई दुनियावी मनफियात का मुतालबा नहीं कर रहे, हम तुमसे कोई अजर नहीं मांग रहे, ठीक है। ये जैसे यहाँ पर इन्होंने लिखा कि मल्ला यसअलुकुम अजरन, उसी तरीके से सूरह हूद के अंदर भी अगर आप जाकर के पढ़ें तो अल्लाह ताला वहां पर भी ना कई अंबिया का तज़किरा करते हैं, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का, हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम का, मूसा अलैहिस्सलाम का, दीगर अंबिया का, ठीक है। तो उन अंबिया ने भी बार बार अपने अपने कौम के साथ यही बात कही थी कि हम तुमसे किसी अजर का मुतालबा नहीं करें, इन अजरिया इल्ला अल्लाह, कि मेरा जो अजर है वो अल्लाह के जिम्मे है, अल्लाह ताला मुझे अता फरमाएंगे, तो मैं तुमसे कोई डिमांड नहीं करता कि तुम मुझे जो है वो दुनिया का अजर दो, मैं तो तुम्हारी खैरख्वाही के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अजर का डिमांड करना जो है ना, ये अंबिया का काम नहीं होता, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ हम एक और बात यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहते हैं, और उसकी वजह यह है कि हम इस बात को सुन करके किसी गलतफहमी का शिकार ना हो जाए, ठीक है। वो गलतफहमी क्या होती है कि एक चीज होती है अजर का मुतालबा करना, ठीक है ना, अजर का मतलब होता है रिवॉर्ड, कोई कॉम्पनसेशन, ठीक है। और एक दूसरी चीज होती है जिसको कि इस्तिलाही लैंग्वेज में कहते हैं उजरत, ठीक है। उजरत क्या चीज होती है, ये तनख्वाह होती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर कोई आलिम आपको कुरान पढ़ाते हैं, ठीक है, यानी जैसे कारी साहब आते हैं आपके बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं, ठीक है, बड़ों को भी पढ़ाते हैं जहां बड़ों को पढ़ने की जरूरत होती है, और उलमा जो है वो किताबें पढ़ाते हैं मदारिस के अंदर। तो उलमा मदारिस में किताबें पढ़ाएं या कारी साहब कुरान पढ़ाएं या हिफ्ज पढ़ाएं, तो वहां पर एक उजरत तय हुई भी होती है, उजरत, ठीक है, जिसको कि तनख्वाह कहते हैं। इसके लिए भी अंग्रेजी में कॉम्पनसेशन का लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो ये जो उजरत का तय होना है ना, ये एक अलग चीज है, ठीक है। अजर का डिमांड करना ये एक अलग मफहूम में लिया जाता है, और उजरत का तय कर लेना ये एक अलग मफहूम में लिया जाता है, ठीक है। तो इस वजह से ना हम उजरत की वजह से हम किसी आलिम को ये नहीं कह सकते कि जी आप ये काम गलत कर रहे हैं, क्योंकि आप तो अजर का डिमांड कर रहे हैं, अजर का मुतालबा कर रहे हैं, जो कि जायज नहीं है इस काम के अंदर, ठीक है। तो उजरत और अजर में फर्क ये वाजह करना यहाँ पर मकसूद है, ये हमारे जहन में क्लियर रहना चाहिए, ताकि हम जो है वो उलमा के बारे में ना बदगुमानी का शिकार ना हो जाए कि जब अंबिया ने कोई अजर डिमांड नहीं किया तो उजरत जो है वो क्यों यहाँ पर तय हुई हुई है, ठीक है। तो एक बात तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई। दूसरी बात ये है कि अजर की डिमांड तो अंबिया नहीं करते थे, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर कोई उनको कुछ हदिया देता था, कोई तोहफा देता था, तो उसको भी जो है वो इनकार कर देते थे, ठीक है, उसको भी लेने से मना कर देते थे, ऐसा नहीं होता था, ठीक है ना। अंबिया को और उसी तरीके से जो अंबिया के वरसा हैं उनको जो हदिया दिया जाता है वो हदिया जो है वो कबूल करते हैं, ठीक है ना। नबी अलैहिस्सलाम को भी हदिये दिए जाते थे और नबी अलैहिस्सलाम हदिये को कबूल करते थे, उसी तरीके से उलमा और मशाइख हैं उनको भी हदिये दिए जाते हैं, उनको भी हदिये कबूल करते हैं, ठीक है। लेकिन इसको भी जो है वो शैतान मैनिपुलेट करके, ठीक है ना, इसको भी एक बदगुमानी का जरिया बना सकता है कि भाई देखो ये लोग हदिये क्यों कबूल करते हैं, इनको तो हदिया भी कबूल नहीं करना चाहिए, और वो इस तरह की बात डालता है कि इनको तो खालिसतन अल्लाह की खातिर काम करना चाहिए, ये तो हदिया क्यों कबूल कर रहे हैं। हालांकि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इन दोनों का आपस में रिश्ता नहीं है, ठीक है, ये दोनों अलग चीजें हैं। एक चीज होती है डिमांड करके लेना, और एक चीज होती है कि अनडिमांडेड किसी को कोई चीज मिले तो उसको कबूल कर लेना। हमारे इस मुआशरे के अंदर जो एक बहुत ही एक नई सोच डेवलप हुई है ना, ट्रेडिशनल दीनी जो अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया था नबियों के जरिए से, आज के दौर के अंदर जो दीनी फिक्र उमूमी तौर पर नजर आती है वो उससे हट करके है, ठीक है ना। ये अकली बुनियाद के ऊपर जो दीनी फिक्र बनी है ना पिछले तकरीबन 70-80 सालों के अंदर, ठीक है ना, ये जो फिक्र बनी है ये अकल की बुनियाद पर काफी हद तक डेवलप हुई है, अकल की बुनियाद पर, ठीक है। तो अकल जो होती है ना वो इंसान को गलत सोच दे जाती है अगर वो वही से गाइडेड ना हो, प्रॉपरली वही से गाइडेड ना हो, ठीक है। तो इस वजह से ये बात लोगों में एक खुसूसन ये जो दुनियावी तालीम याफ्ता तबका होता है जिससे कि हम सब बिलोंग करते हैं, ठीक है, जो कि सेक्युलरली एजुकेटेड होता है और जिसके यानी जिसने दीन पर अमल करना जो है वो किताबी मुताले के जरिए से शुरू किया, किताबी मुताले के जरिए से शुरू किया ना, तो उसको उस तबके को अकल ने ये बात पढ़ाई, ठीक है, उनकी अपनी अकल ने जो कि इन्फ्लुएंस्ड होती है, ठीक है, शैतान से और नफ्स से इन्फ्लुएंस्ड होती है ये अकल, तो उसने ये बात पढ़ाई, ये बात सिखलाई कि भाई हदिया भी कबूल करना जो है ना ये भी नाजायज है या ये भी गलत काम है, इसमें इससे जो है ना इखलास में फर्क आ जाता है, हदिया कबूल करने से इखलास में फर्क आ जाता है। तो ये जो तबका है ना دنیاوی ایجوکیٹڈ طبقہ جس نے مطالعے کی زور کے اوپر دین کو پڑھا سمجھا اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کری, یہ طبقہ جو ہے یہ ہدیہ قبول کرنے کو بہت برا سمجھتا ہے, یہ بہت برا کام سمجھتا ہے. اس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ یہ جو لوگ ہیں نا, جب یہ دین کی کوئی پروگرام کرتے ہیں, جب کوئی یعنی درس و تدریس کا ان کے سلسلہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو ان کو اگر آپ جا کر کے کوئی ہدیہ دینا تو یہ بڑی سختی کے ساتھ اس کو منع کر دیتے ہیں, نہیں جی ہم ہدیہ قبول نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا, ہم جو ہے وہ دینی کام کے لیے ہدیہ قبول نہیں کرتے کیونکہ آپ ہمیں جو ہے وہ دینی نسبت سے آ کر کے ہدیہ دے رہے ہیں, ہم نہیں قبول کریں گے. تو بھائی یہاں تک تو بات چلو ٹھیک ہے, ہم ان کے اس عمل کو وہ اخلاص کی وجہ سے کام کر رہے ہیں, ان کی ڈیفینیشن آف اخلاص یہی ہے, ٹھیک ہے, تو ہم چلیں ہم ان کو غلط نہیں کہتے, مرضی ہے آپ کی یہ کام کریں. بھائی آپ کو کوئی فورس تو نہیں کر سکتا ہدیہ قبول کرنے کے اوپر, آپ نہیں کرنا چاہتے نہ کریں, بے شک نہ کریں, ٹھیک ہے, یہاں تک تو بات ٹھیک ہے. لیکن یہ خراب کب بن جاتی ہے, یہ خراب اس وقت بن جاتی ہے جب کہ کوئی جو ہمارے علماء کرام ہیں, ٹھیک ہے نا, علماء اور مشائخ کا جو سلسلہ ہے, وہاں پر جا کر کے جب کوئی ہدیہ دیتے ہیں نا اور وہ ہدیے کو قبول کر لیتے ہیں, تو اب جو ہمارے جیسے لوگ ہوتے ہیں نا, سیکولرلی ایجوکیٹڈ لوگ جو ہیں, وہ پھر نا ان دونوں میں کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, کمپیریزن شروع کر دیتے ہیں, اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جی فلانے لوگ جو ہیں وہ تو ہدیے قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں اور یہ مولوی صاحب جو ہیں یہ تو ہدیہ قبول کر لیتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اخلاص کی کمی ہے, اور وہاں تو دیکھو کیسا 100% اخلاص ہے کہ وہ تو ہدیے قبول نہیں کرتے, ٹھیک ہے, تو یہ گڑبڑ ہو جاتی ہے, یہ خرابی ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے نا شیطان کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ ہمارے دل کے اندر پھر علماء کے خلاف بدگمانی کے بیج بو دیتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور اس کی وجہ سے پھر معاملہ جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے, کوئی چھوٹا موٹا خراب نہیں ہوتا, بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں لگ رہا ہوتا کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے من لا یسألکم اجرن جو ہے نا, یہ بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے کہ ہم ان دونوں باتوں میں فرق کرنا سمجھیں. اب اس کے اندر کیا کیا کازز ہیں, کیا کیا ریزنز ہیں, یہ بھی بہت کچھ بیان کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کی ابھی میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اوپر مزید میں وقت لگاؤں, ٹھیک ہے, حالانکہ ہر چیز الحمدللہ بالکل کلیئر ہے, لیکن بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتے. اگر کسی کو کوئی سوال ہے تو وہ پوچھے, تو اس سوال کا پھر انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کریں گے, ابھی کلاس میں بھی پوچھ سکتے ہیں, بعد میں پوچھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ہم آگے جو چل رہے ہیں ان حبیب نجار جی کی بات پہ کے اوپر, انہوں نے یہ فرمایا تھا نا کہ جی بما غفر علی ربی ہو جاتا, تو کہ ایک انسان بہت نیک ہے, بہت متقی ہے, بہت پرہیزگار ہے, ٹھیک ہے, پھر بھی اسے گناہ ہو جاتے ہیں, یہ جو معافی والی بات ہے کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا, تو یہ تو انبیاء سے بھی منقول ہے, انبیاء بھی جو ہے وہ استغفار کرتے ہیں, انبیاء بھی جو ہے وہ اپنے گناہ کی معافی کا تذکرہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اولیاء کرام بھی اسی طرح سے کرتے ہیں, حالانکہ وہ اولیاء اسی وقت بنتے ہیں جب کہ انہوں نے گناہ کرنا ترک کر دیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. بھائی کوئی بندہ جو ہے وہ ولی کب بنتا ہے, جب وہ گناہ کرنا ترک کر دیتا ہے, حتیٰ کہ ولایت کے بھی درجے ہوتے ہیں, اگر اونچے درجے کی ولایت پہ پہنچ جائے کوئی انسان, رائٹ, تو گناہ کرنا تو دور کی بات, گناہ کا خیال بھی نہیں آتا اس کو, ٹھیک ہے, گناہ کا خیال بھی نہیں آتا اس کو, جبھی تو وہ ولایت کبرا کے درجے پہ پہنچتا ہے, اونچی ولایت, تو پھر یہ بار بار معافی کا تذکرہ کیوں آتا ہے, یہ معاف کرنے کے پھر ضرورت ہی کیا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کا ذرا جواب دیں اگر آپ میں سے کوئی, کہ ولایت کبرا کے درجے میں پہنچنے والے بندے کو تو گناہ کا خیال ہی نہیں آتا, اور جو نبی ہوتے ہیں وہ تو گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر یہ بار بار بما غفر علی ربی اور رب نے مجھے معاف کر دیا, رب نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا, بڑے بڑے اولیاء کے واقعات ہم سنتے ہیں کہ جی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ کا انتقال ہوا, پھر اس کے بعد وہ کسی کے خواب میں آئے تو پوچھا کہ جی آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا, تو انہوں نے فرمایا کہ میرے چھوٹے سے ایک نیکی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا, भाई आप किस किस्म के वली थे कि आपके इतने गुनाह थे कि अल्लाह ताला को माफ करने की जरूरत पड़ी, ठीक है? तो ये क्या बात है, इल्म और इरादे से गुनाह नहीं करते। नहीं, मैं आपसे वली की डेफिनेशन नहीं पूछ रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जब वो गुनाह करते ही नहीं है, ठीक है, गुनाह करते ही नहीं है, तो फिर माफी की जरूरत ही क्यों पेश आती है, माफी का तذکرہ ही क्यों किया जाता है, ठीक है? ये बात हो रही है असल में। जरा सा हमें अपने दिमाग को जोर डालना पड़ेगा, वो ये कि जी बुलंदी दर्जात खशियत की वजह से, हाँ, क्योंकि वो अपने अमल को अल्लाह की शान के मुताबिक नहीं पाते, ठीक है? वो इस तरह की बात इसलिए करते हैं क्योंकि अपने आमाल को अल्लाह की शान के मुताबिक नहीं पाते, ठीक है? अल्लाह सुब्हान तआला बहुत बड़े हैं, आप में से किसी ने जवाब दिया, अल्लाह सुब्हान तआला बहुत बड़े हैं, ठीक है? उनको अपने नेक आमाल भी गुनाह लगते हैं। चले, अच्छे जवाब आते हैं, लेकिन ये जो दो जवाब हैं जो कि आज माशाल्लाह मर्द बाजी ले गए, कल औरतें बाजी ले गई, कि आज मर्द बाजी ले गए, मर्दों ने जो जवाब दिए ना वो ज्यादा मुनासिब हाल है, कि ये जो बात होती है ना कि जी ये जो वली कामिल हैं और नबी हैं, मासूम हैं, गुनाह करते तो क्या गुनाह का ख्याल भी इनको नहीं आता, ये जो बात होती है वो बंदों को देख करके बात होती है, कि ये बंदे जो है ना वो इतने अच्छे हो जाते हैं कि ये गुनाह नहीं करते। लेकिन जब हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ नजर डालते हैं ना, अल्लाह की तरफ जब निगाह करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इतने बुलंद हैं, इतने बुलंद हैं, इतने बड़े हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक के मुकाबले में जो है ना, इंसान की तो नेकियां भी गुनाह ही होती हैं। इंसान की नेकियां भी जो होती है ना, वो भी यानी जिसको के शरीयत के डेफिनेशन में नेकी कहा जाता है, वो भी जो है ना वो अल्लाह की शान के तो करीब करीब भी नहीं होती ना। अल्लाह ताला के तो मुनासिब हाल वो नेकी कभी हो ही नहीं सकती। और फिर एक एक लम्हा लम्हा यानी अल्लाह का हमारे ऊपर इतना एहसान है, इतना एहसान है, हम अल्लाह ताला के कर्जों में इतने दबे हुए हैं, अल्लाह ताला के एहसान में इतने जकड़े हुए हैं कि हमें तो एक सांस की गफलत भी हमारे लिए इजाजत नहीं है, एक एक सांस की गफलत की भी को भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता अगर हम अल्लाह ताला की अजमत को देखें, ठीक है? तो इस वजह से जो है ना, हर इंसान जो होता है चाहे वो कितना ही नेक क्यों ना हो जाए, कितना ही जो है वो बड़ा वली और नबी ना हो जाए, हर इंसान जो है अल्लाह ताला की शान से बहुत ज्यादा नीचे है, ठीक है? भाई कितने ही बड़े नबी क्यों ना हो, बहरहाल वो मखलूक तो है ना, मखलूक है ना, वो खालिक जैसे तो नहीं बन गए, राइट? खालिक के करीब तो नहीं हो गए ना, यानी उस उनके अंदर रिस्क देने वाली कुदरत तो नहीं आ गई, रहमानियत वाली सिफत तो नहीं आ गई, रजाकियत वाली सिफत तो नहीं आ गई ना, बहरहाल वो मखलूक है, ठीक है? तो इस तरीके से अल्लाह ताला की अजमत की वजह से जो है ना ये बात की जाती है कि अल्लाह ताला ने मेरे गुनाहों को बख्श दिया, इसलिए कि मैं तो हूं ही सरापा गुनाह, ठीक है? मैं सरापा नेक ही नहीं बन सकता, मैं तो सरापा गुनाह ही रहूंगा, चाहे मैं कितनी ही एड़ी चोटी का जोर लगा लूं अल्लाह ताला की शान के मुताबिक, ठीक है? इसके ऊपर एक बात याद आई, पिछले दिनों कहीं पढ़ा था कि एक वालिद साहब जो है, उनसे उनके बेटे ने कहीं सड़क पे जा रहे थे, तो बेटे ने सवाल किया कि बेटे के अब्बू जी अल्लाह ताला कितने बड़े हैं, ठीक है, अल्लाह ताला कितने बड़े हैं जरा बताएं तो सही। तो वालिद साहब ने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया, उन्होंने कहा आसमान पे देखो, वहां एक जहाज उड़ा था, बहुत ऊंचा जहाज उड़ा था, तो उन्होंने फरमाया कि बेटा वो जहाज कितना बड़ा है, तो बेटे ने जवाब दिया कि अब्बू वो तो बहुत छोटा है, मेरी उंगली से भी ज्यादा छोटा है, ठीक है ना, उंगली का नाखून उससे भी ज्यादा छोटा है वो जहाज। तो अब्बू ने कहा चलो ठीक है। फिर अगले दिन जो है ना, वो वालिद साहब बेटे को लेके चले गए एयरपोर्ट, ठीक है, एयरपोर्ट के ऊपर वो रनवे पे लेकर गए, उनको होगा शायद वो एयरलाइन में काम करते होंगे, रनवे पे लेकर के चले गए, रनवे के ऊपर जो है वो बड़ा सा एक जहाज खड़ा हुआ था, शायद बोइंग 747 जम्बो खड़ा हुआ होगा, राइट? उसके करीब ले गए और फिर उससे पीछे से पूछा कि बेटा ये बताओ कि ये जहाज कितना बड़ा है, राइट? तो उस बेटे ने जवाब दिया ये तो बहुत बड़ा है, ये तो इतना बड़ा है कि मैं मुझे तो पूरा नजर भी नहीं आ रहा, मैं तो उसको, इतना बड़ा है ये जहाज। تو ابو نے جواب دیا کہ بیٹا یہی ہوتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کی عظمت ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے، ہمیں نہیں اندازہ ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ہیں اور ہم کتنے چھوٹے ہیں، لیکن جیسے جیسے ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں نا، تو قریب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ چھوٹے رہتے ہیں اور ہم بڑے ہی رہتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں اور ہم چھوٹے ہوتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ جتنا قریب جاؤ گے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ تمہیں بڑے نظر آئیں گے اور اپنا وجود جو ہے وہ اتنا ہی چھوٹا نظر آئے گا. ٹھیک ہے، تو یہ کب ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے یعنی جیسے جیسے قریب ہوتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، تو اس سے جو ہے وہ ہمارا اپنا آپ بڑا نہیں ہوتا، بلکہ ہمارا اپنا آپ جو ہے وہ ہماری نگاہوں میں اور چھوٹا ہوتا ہے اور اللہ کی عظمت جو ہے وہ بڑی ہوتی ہے. لیکن اگر اس سے جو ہے نا ایک اور ہمیں فائدہ کیا ہے، اس فیکٹ کو اگر ہم سمجھ جائیں تو ایک اور فائدہ کیا ہے کہ اگر ہم نیکیاں کر رہے ہیں، خوب کر رہے ہیں اور اپنے حساب سے گناہوں سے بچ بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اپنے یعنی سمجھ میں، اپنے زوم میں گناہوں سے بچ بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ ہم اپنی نگاہوں میں بڑے ہو رہے ہیں کہ جی پہلے تو جو ہے وہ میں بڑا برا تھا، اب جو ہے میں بڑا اچھا ہو گیا ہوں. رائٹ، پہلے تو میں ٹی وی بھی دیکھتا تھا اور ناچ گانا بھی کر لیا کرتا تھا اور موسیقی بھی سن لیا کرتا تھا، تو پہلے تو میں بہت برا تھا، اب جو ہے نا میں بڑا اچھا ہو گیا ہوں. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جتنے پہلے تھے میری نظر میں اتنے ہی ابھی بھی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کیا کس بات کی انڈیکیشن ہے کہ ہماری نیکیاں جو ہے نا وہ غلط سمت میں جا رہی ہیں، یہ نیکیاں نہیں ہیں، یہ کچھ اور ہو رہا ہے، یہ کچھ اور چل رہا ہے، یہ نیکیاں نہیں چل رہی، یہ گناہوں سے بچنا نہیں چل رہا، بلکہ کچھ اور ہی معاملہ چل رہا ہے ہمارے ساتھ. اس لیے کہ جو صحیح نیکیاں ہوتی ہیں ان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اپنا وجود چھوٹا نظر آنا شروع ہوتا ہے. اگر بڑا نظر آنا شروع ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نیکیوں میں کوئی خرابی ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے جو بھی اولیاء ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے گناہوں کی بخشش کی بات کرتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ مجھے اپنے بخشے بخشائے بندوں میں شامل فرما دے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ اپنا وجود ان کے نگاہوں میں چھوٹا ہوتا ہے، اللہ کا وجود جو ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے. وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما کنا منزلین، آیت نمبر 28، کہ نہیں اتارا ہم نے اس قوم کے اوپر، یعنی اس کی قوم کے اوپر، چاہے وہ یعنی حبیب نجار کی جو قوم تھی اس کے اوپر، اس کے بعد یعنی جب انہوں نے حبیب نجار کو شہید کر دیا، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد نا ہم نے ان کے اوپر کوئی جند نہیں اتارا. جند کہتے ہیں آرمی کو، لشکر کو، آسمانوں سے لشکر. کس چیز کا لشکر ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ آسمانوں سے اتارتے ہیں؟ فرشتوں کا لشکر ہوتا ہے. وما کننا منزلین، اور ہم اتارا بھی نہیں کرتے کوئی لشکر، ٹھیک ہے، ہم یہ یعنی اتارنے والے ہیں بھی نہیں. تو اس کا کیا مطلب، کبھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا لشکر نہیں اتارا، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ بدر کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لشکر کو بھی اتارا، لیکن وہاں پر اتارنا جو ہے وہ ایک حکمت سے تھا، ضرورت وہاں پر بھی نہیں تھی ایک فرشتوں کے لشکر کی، لیکن وہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے مومنین کے دلوں کو سبت کرنے کے لیے یہ لشکر اتارا، ورنہ ہمیں ضرورت نہیں تھی اس لشکر کو اتارنے کی. یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک اور انداز میں بیان فرما رہے ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ یعنی عذاب دینے کے لیے جو ہے نا ہم لشکر نہیں اتارا کرتے، بس ایک ہی فرشتہ بھیج دیا کرتے ہیں اور وہی کافی ہوتا ہے. ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، نہیں تھی یہ سوائے ایک چنگھاڑ کے، ایک چیخ کے. فاذا ہم خامدون، اور اچانک اس چیخ کے بعد ہوا کیا، ایک دم سے وہ سارے کے سارے خامدون، بجھ کر رہ گئے. جیسے کہ کوئی موم بتی جل رہی ہو اور کوئی آپ پھونک مارتے ہیں اس کے اوپر تو وہ ایک دم سے بجھ جاتی ہے نا، چراغ ایک دم سے بجھ جاتا ہے. اسی طریقے سے ان کی زندگی کا چراغ، پوری کی پوری بستی والوں کے زندگی کا چراغ جو ہے وہ ایک دم سے بجھ گیا. ٹھیک ہے، یعنی سارے کے سارے مر گئے، ان کے اندر جو زندگی کی حرارت تھی وہ حرارت جو ہے وہ ماند پڑ گئی، ختم ہو گئی وہ حرارت ایک ہی چیخ سے. تو روایتوں سے، حدیث کی روایتوں سے پتہ لگتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور انہوں نے اس یعنی شہر کی گرد جو فصیل تھی اس کے دروازوں کے دونوں پارٹوں کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر بس ایک چیخ ماری. بس یہ ایک ان کا ایک یعنی ایک اسٹائل تھا کہ انہوں نے پکڑا اور چیخ ماری. ٹھیک ہے، تو جو چیخ ماری تو اس سے جو ہے وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ اس کے متحمل نہیں ہو سکے، اتنی زور کی آواز تھی کہ جان ہی ان کی ختم ہو گئی. جیسے کہ جب سور پھونکی جائے گی تو وہ بھی ایک آواز ہی ہوگی، लेकिन उस आवाज का इतना ज्यादा असर होगा कि दुनिया की चीजें जो है वो हिलना शुरू हो जाएंगी और इंसानों के कलेजे फट जाएंगे, अंदर का वजूद जो है वो फट के बाहर आ जाएगा, राइट? और इस तरह से सारे सारे मर जाएंगे। तो क्या चीज पता लगती है इन इन दो वाकयात से? एक तो ये जो कि माजी में हो चुका और जो फ्यूचर में कयामत के दिन होगा कि अल्लाह ताला ने आवाज में कितनी तासीर रखी है। ये आवाज ही तो है कि जिससे कि अल्लाह ताला का पैगाम हम तक पहुंचता है, ये आवाज ही है जिससे कि हिदायत की दूसरी बातें हम तक पहुंचती है ना। सबका सब क्या है? साउंड वेव्स ही है। इस आवाज ही के जरिए से इंसानों का इलाज भी किया जा सकता है, मादी चीजें भी इधर से उधर की जा सकती हैं। जैसे कि कुछ क्लास से पहले आपको बताया था कि वो जो आयत है उसका अमल होता है कि वो इसको पढ़ करके जब फूंक देता है तो आंखों के सामने यानी एक एक अल्लाह ताला बाढ़ बना देते हैं। तो ये भी तो आवाज ही है ना, ठीक है? उसी तरीके से जो गुमराही की बातें होती हैं वो भी आवाज ही की शक्ल में हमारे पास आती है, ठीक है? और उन्हीं के जरिए से जो बदबख्त होता है वो उनकी बात को तस्लीम करके फिर अपने लिए जहन्नुम के फैसले कर लेता है। तो आवाज में कितनी ज्यादा तासीर है, ठीक है? उसी तरीके से आवाज के जरिए से अल्लाह ताला इस दुनिया की पूरी बिसात को लपेटेंगे भी सही, ठीक है? तो सैहतन वाहिदतन, एक ही आवाज होती है और बस उसी से सारा काम हो जाता है, ठीक है? अच्छा, इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं, या हसरतन अलल इबाद मा यातीहिम मिन रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन। ये बंदों के ऊपर हसरत है। अल इबाद, अल इबाद का जो लफ्ज है वो अब्द की जमा है, ठीक है? अल्लाह ताला यहाँ पर सारे बंदों के लिए जो के उस बस्ती में रहते थे और उस जैसे जो जो दूसरे बंदे होते हैं जो कि अल्लाह अल्लाह के रसूलों की नाफरमानी करते हैं, बात मानने से इनकार कर देते हैं, उन सब के लिए अल्लाह ताला यहाँ पर अब्द का लफ्ज इस्तेमाल कर कि ये बंदे हैं। यहाँ पर अल्लाह ताला ने अपनी तरफ इनकी निस्बत नहीं करी, इबादी, ठीक है ना? इबादी कहकर के क्या होता है कि मेरे बंदे, ठीक है ना? ये जो अपनी तरफ निस्बत होती है ना, इसके अंदर एक प्यार और मोहब्बत वाला पहलू आ जाता है, ठीक है? कि इन्ना इबादी लैस लका अलैहिम सुल्तान। अल्लाह ताला ने शैतान को क्या कहा था कि मेरे जो बंदे होंगे ना उनके ऊपर तुम्हारा जोर नहीं चलेगा। वहां पर इबाद के साथ अपनी तरफ निस्बत करी, मेरे बंदे, क्योंकि इसके अंदर मोहब्बत का ताल्लुक आ जाता है। यहां पर अल्लाह ताला किन बंदों की बात कर रहे हैं? जो कि नहीं मानते बात, बल्कि बात ना मानने से आगे बढ़ करके रसूलों के साथ मजाक करते हैं, ठीक है? तो यहां पर अपनी तरफ निस्बत नहीं फरमाई, लेकिन है तो बहरहाल बंदे ना। तो ये याद दिला दिया कि तुम्हारी हैसियत जो है ना वो गुलाम की है, बंदों की है। तुम मेरे नौकर भी नहीं हो, तुम मेरे बराबर वाले होना तो दूर की बात, तुम मेरे नौकर भी नहीं हो। नौकर भी जो होता है वो मालिक के जैसा ही एक इंसान होता है, राइट? तुम तो मेरे बंदे हो, तुम तो हर चीज में मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो। तुम्हारी अपनी क्या कि वो क्या करते हैं, हसरत है जो कि उनके ऊपर जो रसूल आते हैं अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम लेकर के आते हैं वो उनका उनके साथ इस्तेहजा करते हैं, मजाक करते हैं, ठीक है? तो देखें, ये जो रसूल आते हैं ना अल्लाह की तरफ से पैगाम लेकर के आते हैं, तो ये रसूल जो हैं वो डायरेक्ट रसूल भी हो सकते हैं और ये इनडायरेक्ट रसूल भी हो सकते हैं। जैसा कि आगे हम पढ़ेंगे भी कि ये जो तीन लोग आए थे ना इस बस्ती में, तो एक जमात का तो ये ओपिनियन है कि ये तो अल्लाह के डायरेक्ट अपॉइंटेड रसूल ही थे, लेकिन एक ओपिनियन ये भी है जो कि आगे लिखा हुआ है, हजरत कतादा रजी अल्लाह तआला अन्हु से ये मनकूल है, बहुत बड़े मुफस्सिर कुरान सहाबी गुजरे, ठीक है? कि यहाँ लफ्ज मुरसलून जो है ना वो अपने इस्तिलाही माने में नहीं है, जैसे कि इस्तिलाही माना होता है कि अल्लाह की तरफ से डायरेक्टली अपॉइंटेड पैगम्बर, बल्कि यहाँ पर मुरसलून का जो लफ्ज है वो कासिद के मानी में है, ठीक है? यानी ये लोग जो हैं वो कासिद के तौर पर अल्लाह के रसूल के कासिद थे। तो ये जो तीन बुजुर्ग थे जो इस करिये की तरफ भेजे गए थे, ये खुद पैगंबर नहीं थे बल्कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारीन में से थे, ठीक जो सपोर्टर्स थे ना उस ईसा अलैहिस्सलाम के, जिनको हवारी कहते हैं, ये उनमें से थे। उन्हीं के हुक्म से, यानी ईसा अलैहिस्सलाम के हुक्म से ये इस करिए की हिदायत के लिए भेजे। और ये तफसीर इब्ने कसीर से उन्होंने, यानी तफसीर इब्ने कसीर से मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात को नकल किया है, यानी कतादा रज़ी अल्लाह अन्हु के इस कौल को तफसीर इब्ने कसीर में शामिल किया गया और वहां से इन्होंने यहाँ पर मारफुल कुरान के अंदर नकल किया। ये पेज 373 के लास्ट पैराग्राफ से मैं पढ़ रहा हूँ, अगर देखना चाहे तो वहां से रिफर भी कर सकते हैं। तो चूंकि उनके भेजने वाले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल थे, तो उनका भेजना भी बिलवास्ता अल्लाह ही का भेजना था, ठीक है, इसलिए आयत में इनके इरसाल को अल्लाह ताला की तरफ मंसूब किया गया। क्या मतलब कि वास्तों के साथ भी अगर हमारे पास कोई आता है ना, तो वो भी अल्लाह ही की मर्जी से आता है, अल्लाह ही की तरफ से आता है। और उसकी भी जो के साथ भी अगर हम ये इस्तेहजा वाला मामला करेंगे ना, तो उसके ऊपर भी हम अल्लाह ताला की नाराजगी के का इंतजाम करेंगे, ठीक है, अपने लिए नाराजगी का यानी सबब बनाएंगे अपने लिए, ठीक है। तो इस वजह से अगर कोई हमारे साथ खोई की बात करता है, तो हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए, हमें उनके साथ जो है ना हंसी मजाक और यानी तंज वाला मामला नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और इस मामले में हमारे मुआशरे के अंदर बहुत ज्यादा बेएहतियाती पाई जाती है, ठीक है, खुसूसन जो है वो जब से हमने उलमा से अपना रिश्ता तोड़ा है ना, जो कि हमारी अपनी दिल की गफलत है और हमारे दिलों के अंदर दुनिया की मोहब्बत है, उसकी वजह से हमने इन मशायख और उलमा के साथ अपना रास्ता बिल्कुल जुदा करके दुनिया की तरफ डाल दिया है। तो उसके बाद से ना हमारे मुआशरे के अंदर जो लफ्ज मौलवी है, मौलाना साहब है, राइट, और दूसरे इस तरह के जो अल्फाज होते हैं, इनको जो है वो वी हैव स्टार्टेड लुकिंग डाउन अपॉन देम, ठीक है ना, हम इनको जो है वो अच्छी नजर से नहीं देखते। कुरान पढ़ाने वाले कारी साहब है, उनको तो हम पता नहीं अपना कोई बहुत ही घटिया किस्म का मुलाजिम समझते हैं, उसी तरह से मौलवी साहब को, राइट, उसी तरह से कोई नसीहत करने के लिए हमारे पास आता है तो हम उसके साथ मजाक करना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना, यानी ऐसी बातें करते हैं कि गोया कि उनको किसी तरह से जो है ना वो उनको प्ले डाउन करें, उनकी बात को कम अहमियत दें, ठीक है। तो हमारे लिए ये जो आयात है, किताब हिदायत की आयात है ना, हमारे लिए हिदायत क्या है, हमारे पास नबी तो कभी आएंगे नहीं, तो फिर ये आयत तो हमारे लिए इररिलेवेंट हो गई ना, नाउज बिल्ला, क्योंकि नबी तो हमारे पास कभी आएंगे नहीं, तो फिर इस आयत का फायदा खत्म हो गया हमारे लिए? नहीं, खत्म हरगिज नहीं हो गया, ठीक है, बिल्कुल ये हमारे लिए एप्लीकेबल है। क्यों? इसलिए कि हमारे पास जो नबियों के जो वरसा आते हैं, ठीक है ना, हमें उनके साथ केयरफुल रहने की जरूरत है, अगर हम नहीं रहेंगे तो हम उन्हीं कुफार की सुन्नत पर अमल करने वाले होंगे, ठीक है, जिन कुफार के बारे में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं या हसरतन अलल इबाद, कि इनके ऊपर हसरत है, यानी कैसे ये यानी नाकाम किस्म के लोग हैं कि अफसोस होता है इन लोगों के ऊपर, ठीक है, कि इनके ऊपर कोई रसूल नहीं आया सवाए इसके कि उन्होंने रसूलों का मजाक उड़ाया, ठीक है। तो बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि हम कोई ऐसी यानी इवन मुशाबहत भी ऐसी इख्तियार न करें कि जिससे कि ऐसे लोगों की जो है ना वो बेइज्जती की शक्ल निकलती हो कोई, ठीक है, बहुत केयरफुल रहना चाहिए अपनी आखिरत की खातिर, अपनी आकिबत की खातिर जुबान संभाल के रखना चाहिए, ठीक है। उम्मीद है कि ये आयत हमें इंशाअल्लाह याद रहेगी। अलम यरो कम अहलकना कबलहुम मिनल कुरूनी अन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन, क्या नहीं देखते कि कितनी गारत कर चुके, कितने हलाक कर चुके हम इनसे पहले बस्तियां, अन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन, अब ये बस्तियों वाले जो हैं ये दुनिया की तरफ लौट कर नहीं आएंगे, ठीक है ना। क्या है, एक ही मोहलत होती है हमारे पास, ये जो जिंदगी है ये एक ही है, ये दो जिंदगियां नहीं है कि एक जो है वो हमने नाफरमानी में गंवा दी, मर गए, फिर जो है वो दूसरी लेकर के आ जाएंगे और उसके अंदर नेकी की जिंदगी गुजारे, एक ही जिंदगी है। और ये कैसी जिंदगी है कि जिसके खत्म हो जाने का हमें अंदाजा ही नहीं है कि कब खत्म हो जाएगी, राइट, कोई लिख करके गारंटी के साथ यहाँ पे दिख सकता है चैट विंडो के ऊपर कि मैंने कल जिंदा रहना है, कल मैं ये क्लास अटेंड करूंगा, राइट, कोई कह सकता है, किसी के पास इतनी अथॉरिटी है, किसी की मजाल है इतनी कि वो ये क्लेम कर सके, राइट, तो ये तो हमारी जिंदगी की हकीकत है, हम तो एक दिन का क्लेम नहीं कर सकते। तो ये जो एक मोहलत अल्लाह ने हमें दी है जिसके बाद हमने वापस नहीं आना है, ये एक मोहलत जो है वो अगले लम्हे खत्म हो सकती है, अगले दिन खत्म हो सकती है, अगले साल खत्म हो सकती है, किसको क्या पता अगला रमजान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस मोहलत को जो है ना हम बहुत फूंक फूंक करके इस्तेमाल करें, इसको हम जाया नहीं कर सकते बेवकूफी की बातों के अंदर, फेसबुक के ऊपर जो है वो, और इंटरनेट के ऊपर ब्राउजिंग करके और इधर उधर की वेबसाइट देख करके, और गुनाहों के अंदर लोगों की गीबतें करके और खामखा की जो है वो इस तरह की बातें करके हम इसको जाया कर बैठेंगे तो दूसरी नहीं मिलेगी, राइट। अन्नहुम इलैहिम ला यरजून, वापस नहीं आने वाले हैं इस दुनिया की तरफ। इन्होंने जो हरकतें कर दी, अल्लाह ने इनको अंजाम तक पहुंचा दिया, अब इन्होंने आगे जो है वो जहन्नुम के अंदर जाना है, अब वापस दुनिया में नहीं आना। तो कई बस बस्तियां इस तरह से इंसानों ने अपनी गलतियों की वजह से अल्लाह ताला ने उनको हलाक कर दिया। वह इन कुल्लम्मा जमी और लदई ना मुखरून, और इन सब में कोई नहीं जो इकट्ठे होकर ना आए हमारे पास पकड़े हुए। तो अब ये आगे ही जाएंगे, ये वापस पीछे नहीं आएंगे, और आगे जो जाएंगे ना तो इनको फिर फरिश्ते पकड़ करके हमारे पास हिसाब किताब के लिए दे करके आएंगे। ठीक है जी, क्या मौलवी साहब कहने में बेहुर्मती पाई जाती है, मौलाना साहब कहना चाहिए? नहीं, मौलवी साहब कहना भी जो है वो बेहुर्मती नहीं बनती, मौलाना साहब कहना जो है वो भी कोई हुर्मत नहीं बनती, ये इंसान की नीयत के ऊपर होता है। दोनों जो है वो अरबी जुबान के अल्फाज हैं और दोनों सही अलकाब हैं, ठीक है। मौला, मौला का तो ऐसा लफ्ज इतना बड़ा है कि ये अल्लाह ताला के लिए भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। अंत मौलाना, राइट, तो ये इतना अजीम लफ्ज है कि ये अल्लाह के लिए भी इस्तेमाल होता है, अगरचे कि ये ऐसा लफ्ज नहीं है जो कि सिर्फ अल्लाह के लिए इस्तेमाल हो, ये किसी भी अपने मददगार के लिए, दोस्त के लिए इस्तेमाल होता है। तो मौलाना साहब या मौलवी साहब, आप तो अरबी ग्रामर के भी तालिबे इल्म हैं, तो फर्क सिर्फ दोनों के अंदर जो है वो वाहिद मुतकल्लिम की जमीर और जमा मुतकल्लिम की जमीर का फर्क है। तो दोनों ही सही हैं, अलबत्ता नीयत की वजह से दोनों ही खराब हो सकते हैं, तो नीयत यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, इसके जो तो मारुफ मसाइल हैं उनके अंदर से छोटी एक बात करके, फिर थोड़ी सी एक बात करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक्चुअली चंद पॉइंट्स मैंने नोट किए थे, उसको जरा हम कुछ देख लेते हैं। पेज नंबर 373 के नीचे वाला जो पैराग्राफ था वो तो हमने देख लिया ना, कि ये जो रसूल थे, तो एक कॉल इनके बारे में है कि ये रसूल के रसूल थे, ये बिला वास्ता रसूल नहीं थे, ठीक है। तो अगर बिला वास्ता थे या नहीं थे, इधर वे इन लोगों की जो लोगों ने बेकदरी करी तो इसके ऊपर अल्लाह ताला ने इनके ऊपर अजाब भेज दिया, जिससे कि ये सारे के सारे मर गए, ठीक है। अच्छा, इसमें एक नुक्ता ये याद रखें कि बकी के जितने लोग थे तो उनके अंदर जो लोग यानी इनकी हाँ में हाँ मिला रहे थे, वो तो हमारी भी समझ में आता है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वो तो अजाब के मुस्तहिक थे ही, लेकिन बस्ती के अंदर कुछ बच्चे भी तो होंगे ना जो कि मासूम जो होते हैं, जिनके ऊपर के अभी यानी उनको मुकल्लफ नहीं बनाया, जो अभी मुकल्लफ नहीं बने होते हैं अपने अमल के, तो वो भी तो हलाक हो गए इस चीख से। तो उसके ऊपर ये बात यानी हदीसों से बात क्लियर है कि जो गैर यानी गैर बालिग बच्चे होते हैं ना, नाबालिग बच्चे जो होते हैं, तो वो अगरचे के काफिर के बच्चे हों, तो दुनिया में तो उनके ऊपर हुक्म, दुनियावी एतबार से हुक्म उनके ऊपर काफिर का लगाया जाता है, यानी उनको अगर वो मर जाएं तो उनको दफन जो है वो काफिरों के कब्रिस्तान में किया जाता है, ठीक है ना। ये लेकिन ये कहलाता है दुनियावी हुक्म, ठीक है। लेकिन काफिरों के बच्चे कयामत के दिन जो है ना वो जहन्नुम में नहीं डाले जाएंगे, ठीक है। तो अगरचे कि वो किसी अजाब के अंदर ही, अजाब ही की लपेट में आ गए हो, ठीक है, या जो है वो किसी और यानी मौके पर वो अपनी यानी बलूगत से पहले दुनिया से चले गए हो, ठीक है, तो उनका जो जो मामला है फिर वो यानी जन्नत वाला ही मामला होगा, ठीक है। तो इस वजह से ये तो सिर्फ दुनियावी जिंदगी की बात हो रही है ना, कि एक चीख से जो है वो सारे सारे मर गए, लेकिन जो लोग अपने इल्म और इरादे के साथ इसके अंदर शामिल नहीं थे तो उनके साथ फिर दूसरा मामला होगा, जैसे कि बच्चे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये कि पेज नंबर 375 के ऊपर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है हमारे नबी अलैहिस्सलाम की शान के मुताबिक, ठीक है। तो उसमें मैं पढ़ रहा हूँ 375 के बिल्कुल नीचे आखिरी दो लाइनें, कि तारीखी रवायात में हजरत इब्ने अब्बास, मुकातिल, मुजाहिद, आइमाए तफसीर, ये बहुत बड़े बड़े तफसीर के इमाम गुजरे हैं हमारे। तो उनसे मनकूल है कि ये शख्स हबीब इब्ने इस्माइल नजार था। ठीक है ना, ये जो आए थे ना दौड़ते हुए, इनका नाम हबीब इब्ने इस्माइल नजार था, और ये उन लोगों में से हैं जो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपकी बिरसत से 600 साल पहले ईमान लाए। ठीक है, क्योंकि ईसा अलैहि सलाम जो है वो 600 साल पहले गुजरे थे, और ये जो वाकया पेश आया था, कुछ रिवायतों से ये बात पता लगती है कि ये ईसा अलैहि सलाम ही के जमाने का वाकया था, क्योंकि जैसे कि हवारीन को भेजा ना, तो हवारी तो वो थे ना ईसा अलैहि सलाम के साथ होते थे। ठीक है, तो ये गोया के ईसा अलैहि सलाम ही के वक्त की बात, तो ईसा अलैहि सलाम 600 साल पहले गुजरे थे। ठीक है, तो ये जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के ऊपर 600 साल पहले ईमान लेकर के आ गए थे, क्योंकि ईसा अलैहि सलाम भी जो इस दुनिया में आए थे, तो उन्होंने भी जो है वो नबी अलैहि सलाम ही के आने की बशारत दी थी। ठीक है, तो इन तक जो पैगाम पहुंचाया होगा ना, चाहे हवारियों ने पहुंचाया हो, ठीक है, चाहे किसी और ने पहुंचाया हो, तो वो नबी अलैहि सलाम ही के बारे में बताया होगा। इसी वजह से तारीखी रिवायत में ऐसी बात मनकूल है। कि तारीखी रिवायत का मतलब ये नहीं होता कि हदीस में मनकूल है, बल्कि तारीखी रिवायत मीन्स के अदर देन हदीस। ठीक है, तो कुछ ऐसी भी बातें अल्लाह ताला ने अपने बंदों को इल्हाम के जरिए से बताई हैं, जो कि नबियों के डायरेक्ट वास्ते से नहीं बताई। ठीक है, तो उनको फिर तारीखी रिवायत कहा जाता है, लेकिन उनकी ऑथेंटिसिटी जो होती है ना वो कन्फर्म नहीं होती। ठीक है, क्योंकि वो हदीस नहीं होती, वो कुरान नहीं होती, या अल्लाह की और किताब नहीं होती, वो तारीख रिवायात होती है, तो इस वजह से उसकी वैलिडिटी जो होती है उसकी वैल्यू कम। ठीक है, बहरहाल तारीख रिवायत से ये बात पता लगती है कि ये आप सस्लम की बेसत पर ईमान लेकर के आए थे, जैसा कि तुब्बा अकबर के मुतालिक मनकूल है। कौम तुब्बा, इसका कुरान में जिक्र आता है, तो ये यमन के इलाके में रहने वाली एक कौम थी, और इसका एक बड़ा सरदार था, उसको तुब्बा अकबर कहा जाता है। ठीक है, तो उसके मुतालिक मनकूल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत कुतुबे साबका में पढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से बहुत पहले आप पर ईमान आया। ठीक है, बाकायदा मदीना मुनव्वरा अपने पूरे लश्कर के साथ आया था, और मदीना मुनव्वरा में यानी क्योंकि उसको कुतुबे साबका से सारे आसार मिल गए कि जी इस जगह पर आखिरी नबी ने आना है, तो वो सफर करके मदीना मुनव्वरा पहुंचा, लेकिन उस वक्त तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ ही नहीं लाए थे। तो उसने जो है बाकायदा एक खत लिखा नबी अलैहि सलाम के नाम, और वो खत जो है वो मदीना मुनव्वरा के एक रिहायशी को दिया कि जब तुम्हारे पास वो अल्लाह के नबी आएंगे मेरा खत उनको दे देना। उस खत में उसने अपने ईमान की गवाही दी थी कि मैं आपका आपके ऊपर ईमान लेकर के आता हूँ। तो वो खत जो है ना वो हजरत अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु के खानदान में ऊपर किसी को दिया गया, तो वो खत वहां से चलता आ रहा था, हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु के पास पहुंचा। जब नबी अलैहिस्सलाम हिजरत कर मदीना मुनव्वरा पे तशरीफ लाए, तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले किया। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से कितने सौ साल पहले वो तुब्बा अकबरी, या पता नहीं कितने साल पहले वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत पर ईमान ला चुका था। तीसरे बुजुर्ग आदमी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत और दावत से पहले ईमान लाए, वो वरका इब्न नौफल है। ठीक है, खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के जो कजन थे, जिनका जिक्र सही बुखारी की हदीस इब्तिदाए वही के वाकयात में आया है। तो इंशाल्लाह आप सब ने वो वाकया तो सुना ही होगा, पढ़ा होगा। ये भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसियत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत और बिअसत से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये तीन आदमी ईमान ले आए थे, ये मामला किसी और रसूल और नबी के साथ नहीं हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हमारे नबी की खसूसियात में से एक खसूसियत है। ठीक है, इसके बाद एक और पॉइंट जो आपके लिए लिखा था, लेकिन अगले पेज के ऊपर ही पैगंबराना दावत और इस्तिलाह इस्लाह का तरीका, मुबल्लिगीन इस्लाम के लिए अहम हिदायत। तो इस बस्ती की तरफ जो तीन रसूल भेजे गए, उन्होंने मुशरिकीन और कुफार से जिस तरह खिताब किया, और उनकी सख्त और तल्ख बातों और धमकियों का जिस तरह जवाब दिया, इसी तरह इनकी दावत से मुसलमान होने वाले हबीब नजार ने अपनी कौम से जिस तरह खिताब किया, इन सब चीजों को जरा मुकर्रर देखिए, यानी एक बार जरा इनको देखिए, तो इसमें तबलीग दीन और इस्लाह खल्क की खिदमत अंजाम देने वालों के लिए बड़े सबक है। ठीक है, अब हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से दीन का इल्म हासिल कर रहे हैं, कुरान के दर्स के हलके में शामिल है, तो हम यकीनन चाहेंगे और हमें चाहना चाहिए कि हम दूसरे लोगों को भी अपने खानदान वालों में, अपने रिश्तेदारों में, दोस्त अहबाब में इन चीजों के बारे में बताएं। तो अब हम दावत और तबलीग करेंगे, करना चाहिए। ठीक है, तो अब हमें भी ये असबाब जो है सीखने चाहिए कि कैसे करनी है दावत तबलीग। तो फरमाया कि इन रसूलों के नासिहाना तबलीग व तलकीन के जवाब में मुशरिकीन ने तीन बातें कही। नंबर एक, कि तुम तो हम ही जैसे इंसान हो, हमारे जैसे इंसान हो, हम तुम्हारी बात क्यों माने? ठीक है, तुम कहाँ से जो है वो ये तमगा लेकर के आगे कि जो हमें नसीहत करना शुरू हो गए, राइट? हम भी जब किसी के पास जाएंगे बात करने के लिए, जो हमारा पुराना जानने वाला होगा ना, कॉलेज का दोस्त होगा, स्कूल फ्रेंड होगा या कजन होगा, राइट, तो वो भी हमें ये बात कह सकता है क्योंकि हमारी साथ बेतकल्लुफी है। बेतकल्लुफी में इंसान ऐसे ही जवाब देता है कि तुम कहाँ से आ गए जी तुर्रम खान, राइट, हमें आकर के नसीहत कर रहे हो, तुम भी तो हमारे साथ ये किया करते थे, है? तुम भी तो हमारे साथ जो है वो भी किया करते थे, तो सारी बातें किया करते हैं लोग एक दूसरे के साथ, राइट, कजन्स और फ्रेंड्स, ठीक है, तो तुम तो हमारे जैसे हो, तो तुम कहाँ से आ गए बात करने वाले, हम तुम्हारी क्यों बात माने भाई? दूसरी बात, अल्लाह रहमान ने किसी पर कोई पैगाम और किताब नहीं उतारी, तुम झूठ बोल रहे हो कि तुम्हारे ऊपर पैगाम उतार दिया है, तुम जो है वो ये लेकर के आए हो। और तीसरी बात, कि तुम खालिस झूठ बोलते हो, ठीक है ना, तोहमत लगाई ना झूठ की। आप गौर कीजिए कि बेगर्ज नासिहाना कलाम के जवाब में ये इश्तेआल अंगेज गुफ्तगू क्या जवाब जाती, ठीक है, मगर इन रसूलों ने क्या जवाब दिया? सिर्फ ये कि रब्बुना यालमु इन्ना इलैकुम लमुरसलून, यानी हमारा रब जानता है कि हम तुम्हारी तरफ भेजे हुए आए, हमारा रब जानता है, मेरा रब जानता है कि मैं जो बात मैं कह रहा हूँ ना ये सच है, ठीक है, ये क्या बात हुई भाई? ठीक है, अल्लाह जानता है कि मैं सच कह रहा हूँ, ठीक है, इसके अंदर भी बड़ी हिकमत है। एक तो ये कि ये जो दावत देने वाला होता है ना, इसका अपने रब के साथ एक बड़ा गहरा रिश्ता होना जरूरी है, ठीक है ना, रब के ऊपर यकीन, एतमाद, हत्ता के जो वो बात कह रहा है उसके ऊपर भी एतमाद होना चाहिए उसको, ठीक है। सबसे ज्यादा ईमान तो दावत देने वाले के अंदर होना चाहिए ना, कि वो अगले बंदे को ईमान की तरफ बुला रहा है, अगर खुद ही डामाडोल है, अगर खुद ही जो है वो शक में मुब्तला है कि पता नहीं जो मैं बात कह रहा हूँ ये वाकई ऐसा है भी कि नहीं, बस मैंने सुना था, आगे बढ़ा रहा हूँ, राइट, तो ये तो ईमान ना हुआ ना, ये तो आपका यकीन ना हुआ ना, आप ऐसे ही जो है वो सुनी सुनाई को आगे बढ़ा रहे हैं, आपको खुद पता नहीं कि आप कह क्या रहे हैं, ठीक है ना, तो ये इस तरह से दावत नहीं दी जाती, ठीक है। इस वजह से दावत देने के ना दो तरीके होते हैं। एक तो तरीका ये होता है कि इंसान खुद इतना मजबूत हो जाए, यकीन कामिल के साथ दावत, ठीक है, तो उसके लिए अपनी इसलाह जो है ना वो पहले करनी होती है, ठीक है, पहले अपनी खूब अच्छी तरीके से इसलाह करें ताकि हमारा ईमान पक्का हो जाए और वो यकीन में तब्दील हो जाए, फिर जाकर के दावत दे, ठीक है ना। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या दावत देने का होता है? वो तरीका ये होता है कि आप अभी तक खुद तो पक्के नहीं हुए, ठीक है, खुद तो जो है ना वो आप जो है वो यानी गुनाह भी साथ चल रहे हैं, नेकियां भी चल रही हैं, गुनाह भी चल रहे हैं, और थोड़ा बहुत आपने पढ़ लिया है, क्लासेस थोड़ी सी अटेंड कर ली है, ठीक है, तो अब जो है ना आप क्योंकि खुद पक्के नहीं है, थोड़े से कच्चे ही हैं, ठीक है, तो अब जो आप दावत देंगे ना, तो वो जो आप दावत देते हैं तो वो उसके अंदाज ही होना चाहिए कि आप उनसे जो है वो खुद पूरी बात ना करें, थोड़ी बात करें उनसे, थोड़ी बुनियादी बातें उनसे करें नेकी की, राइट, लेकिन उनको जो है जोड़ने की कोशिश करें अपने मशायख के साथ, ठीक है, अपने असातज़ाए कराम और मशायख उनके साथ जोड़ें, क्योंकि अभी आप इतने पक्के नहीं हैं कि वो आपसे जुड़ सके, ठीक है ना, वो आपसे क्या जुड़ेंगे, अगर जुड़ भी गए तो शायद आप अपने डूबने के साथ उनको भी ले डूबेंगे, ठीक है ना, तो इस वजह से जब तक इंसान बहुत कच्चा होता है ना, तो वो अपने से जोड़ने की बजाय जो है वो अपने ऊपर वालों के साथ जोड़े, ठीक है, जिनको कि वो अपने गुमान में अच्छा समझता है, पक्का समझता है, ठीक है, अब वो पक्के हैं या नहीं ये आपका मसला नहीं है, ये आप अपने मशायख को तोड़ना शुरू कर दें कि जी पता नहीं पक्के हैं कि नहीं है, राइट, ये आपका मसला नहीं है, ये उनके ऊपर वालों का मसला है, ठीक है ना, लेट देम डिसाइड कि जी ये पक्के हैं कि नहीं, तो आपका ये काम है कि अपने मशायख के साथ अच्छा गुमान रख करके जिनको आप नेकी की तरफ बुलाना चाहते हैं उनको अपने मशायख से जोड़ने के, ठीक है, तो ये दो तरीके होते हैं दावत देने के, एक ये कि अपने आप से जोड़ना, ठीक है, ये कब करना होता है? जब खुद पक्के हो चुके हो। अब ये भी एक अलग डिस्कशन है कि जी खुद कब पक्के हुए, जी हम तो कभी पता ही नहीं लगेगा कि हम कब पक्के हुए, इसका जरा जवाब देना कोई, ये अपने से जोड़ने वाली मेहनत जो है ये कब करनी होती है? अपने से जोड़ने वाली मेहनत कोई बता सकता है? और दूसरे तरीका क्या होता है कि अपने से नहीं जोड़ना बल्कि अपने बड़ों से जोड़ना, ठीक है, तो ये दावत के दो तरीके होते हैं, ठीक है, तो अगर कोई आपसे बता दे कि अपने से कब जोड़ना होता है, जब शेख एडवाइस करें, अपने से जोड़ने वाली मेहनत जो है वो उस वक्त करनी होती है जब आपको آپ کے شیخ نے حکم دیا ہو کہ جی اب لوگوں میں کرو اور اپنے سے جوڑو، تب آپ اپنے سے جوڑنے کی محنت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ادروائز آپ اپنے سے جوڑنے کی محنت نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ کام جو ہے وہ صرف حکم پر ہی کیا جا سکتا ہے. آپ خود کبھی اپنے آپ کو کیلکولیٹ نہیں کر سکتے جی اب میں اس قابل ہو گیا کہ میں اپنے لوگوں کو جوڑ سکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ خود کیلکولیشن انسان نہیں کر سکتا، کیونکہ شیخ کیونکہ شیطان جو ہے نا وہ ہمیشہ ہی اس کو دھوکے میں رکھتا ہے اور اس کوئی سمجھاتا ہے کہ ہاں تم تو اتنے افلاطون بن چکے ہو کہ اب لوگ جو ہے وہ تم سے جوڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ عالم کورس کر کے نہیں ہوتا یہ کام، بڑوں کی اجازت سے. وہ عالم کورس جو ہوتا ہے نا وہ صرف انسان کو عالم بناتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ عالم جو ہوتا ہے وہ جوڑنے والی محنت نہیں ہوتی، وہ علم پڑھانے والی محنت، ٹھیک ہے؟ تو عالم کورس کرنے کی بیسس پر جو دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو یہ معاملہ خراب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے یہ جو جوڑنے والی محنت ہوتی ہے یہ عالم کورس سے نہیں آتی، جب اپنے شیخ سے سند مل جائے. یہ تو شیخ ہی بتائے، جی شیخ ہی بتاتا ہے کہ جی کب آپ جو ہے وہ اپنے جوڑ سکتے ہیں، آپ اکیڈمی پرمیشن ہوتا ہے شیخ، جب مشائخ اجازت دیں. ہاں وہ اجازت ہی کو کیا جاتا ہے حکم دینا، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے یہ اس طرح سے بات کری. اب اس کے اندر ایک اور ہمارے جو روزمرہ کے حالات ہوتے ہیں تو ان کے سے تعلق رکھنے والی ایک بات ہے کہ بھائی دیکھیں یہ جو ایک کانورسیشن والا ایک سلسلہ چلا نا ان کے درمیان مکالمہ، ٹھیک ہے نا، تو اس کو ہم ایک ذرا سا ایک تھوڑا سا اس کے اندر نیگیٹو کانوٹیشن ہوتی ہے اس سے بھی تھوڑا اس کو کر سکتے ہیں. اس کو کہتے ہیں مکالمہ بازی، ٹھیک ہے نا، ادھر سے اس نے کچھ کہا، ادھر سے اس نے کچھ کہا، ادھر سے کچھ کہا، اس نے کچھ کہا. یہ مکالمہ بازی جو ہے اس سے ہم بخوبی واقف ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم جیسے لوگ بہت اچھی طرح سے اس سے فیملیئر ہیں، کیونکہ یہ مکالمہ بازی جو ہے وہ ہمارے گھروں کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، خاندانوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے، بیوی شوہر کے درمیان ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ ساس بہو کے درمیان ہو جاتی ہے، کبھی جو ہے وہ کسی نندوں کے درمیان ہو جاتی ہے، کبھی ساتھ کبھی کسی کے درمیان، کبھی کسی کے درمیان، یہ مکالمہ بازی لوگوں کے درمیان چلتی رہتی، ٹھیک ہے. تو یہ مکالمہ بازی جو ہے یہ اس کے اندر کیسے پتا لگتا ہے جی کہ جی کون فریق جو ہے وہ حق پر ہے، کون فریق باطل پر ہے، یا یہ کہ جو بھی مکالمہ بازی کرتا ہے تو ضروری ہے کہ دونوں ہی غلط، کیونکہ مکالمہ بازی اچھی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اب جیسے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہے یا مکان سے جھگڑا نہیں ہو رہا ہے، مکالمہ بازی، بات چیت ہو، ٹھیک ہے، وہ ایک موقف کہہ رہا ہے، دوسرا موقف کہہ رہی ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح دو رشتہ داروں کے درمیان، ٹھیک ہے، تو کیا یہ مکالمہ بازی کا مطلب یہ ہے کہ جی دونوں ہی غلط ہیں، یا ہر صورت میں ایسے ہی ہوتا ہے، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک صحیح اور دوسرا غلط، ٹھیک ہے، تو کیسے ڈسائڈ ہوگا کہ جی ایک صحیح ہے دوسرا غلط ہے یا دونوں ہی غلط. تو اس کے لیے جو ہے نا وہ ضروری ہے کہ یعنی ایک بات تو یہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ضروری نہیں ہے کہ دونوں غلط ہوں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دونوں غلط ہوتے ہیں. وہ دونوں غلط کیوں ہوتے ہیں؟ کہ دونوں جو ہے نا وہ بیسکلی اپنی ہی مرضی چلانا چاہتے ہیں، چاہے ساس اپنی مرضی چلانا چاہ رہی ہو اور بہو اپنی مرضی چلانا چاہ رہی ہو، یا شوہر اور بیوی دونوں میں اپنی مرضی چلانا چاہ رہے ہو، تو پھر تو دونوں ہی غلط، ٹھیک ہے نا. اپنی مرضی جب بھی کوئی چلاتا ہے نا تو دونوں ہی غلط ہو جاتے ہیں ایسے مکالمے بازی کے اندر. لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. اور وہ کب ایسا نہیں ہوتا؟ جب ان دونوں میں سے ایک فریق جو ہے وہ اپنی مرضی امپوز کرنے کے بجائے دلیل کے ساتھ کسی بڑے کی مرضی کو امپوز کرنا چاہ رہا ہوں یا سمجھانا چاہ رہا ہوں، امپوز کا لفظ چلیں نیگیٹو ہے، تو سمجھانا چاہ رہا ہوں، کوئی کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں، یا جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں کسی بڑے کی بات، ٹھیک ہے. تو جب وہ کسی بڑے، بڑے سے مراد صحیح بڑا، آف کورس ناٹ غلط بڑا، صحیح بڑے کی بات کو اگر وہ امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو پھر یہ مکالمہ بازی جو ہے اس کے اندر ایک فریق حق پر کہلائے گا، دوسرا فریق باطل پر کہلائے گا، ٹھیک ہے. کیونکہ یہ جو بات کر رہا ہے یہ کسی دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہے، اور دوسرا بندہ جو ہے وہ بغیر دلیل کی باتیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے. تو ایسا جو مکالمہ ہوتا ہے نا، ایسے مکالمے کے اندر ایک حق پر کہلائے گا، دوسرا باطل پر کہلائے گا. لیکن یہ جو دلیل ہوتی ہے، یہ دلیل کس طرح کی ہونی چاہیے؟ یہ دلیل جو ہے دو طرح کی ہوتی ہیں، جیسے ابھی آپ کے سامنے الفاظ بولے تھے، عقلی اور نقلی. عقلی دلیل بھی ہونی چاہیے، نقلی دلیل بھی ہونی چاہیے. اس کی بنیاد پر پتہ لگتا ہے کہ جی ایک فریق جو ہے وہ صحیح بات کر رہا ہے، दूसरा फरीक है उसे ये बात नहीं करा जो कि इसके अपोज कर रहा है। अगर इसके पास अकली दलील है, नकली दलील है, तो इससे पता चलेगा कि ये कोई सही बात कर रहा है, ठीक है। तो बीवी जो है वो कोई नेकी की बात कर रही है, शौहर जो है वो मुखालफत कर रहा है, ठीक है। तो भाई बीवी जो है वो अकली दलील और नकली दलील के जरिए से बात करे, के साथ बात करे, तो फिर वो हक पे कहलाएगी और शौहर जो है वो गलती पे कहलाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर शौहर गलत कोई बात अच्छी करना चाह रहा है तो वो भी अकली और नकली दलील के साथ बात करे। अगर बगैर दलील के ऐसे बात करेगा कि जिस मैं कह रहा हूं ना बस, राइट, बस चूंकि मैं कह रहा हूं बस इस वजह से ये काम होना चाहिए, तो भाई आपके बस कहने से तो कुछ नहीं होता ना, दुनिया के अंदर बसें तो नहीं चलनी शुरू हो जाती आपके बस कह देने की वजह से, ठीक है ना। तो भाई जिस तरह से आपका एक ओपिनियन है उसी तरीके से बीवी का भी एक ओपिनियन है, तो वो भी तो आगे से बस कह सकती है ना। हाँ, अगर आपने डंडा उठा के बीवी को मारना शुरू कर दिया तो वो बस कहेगी तो नहीं, ठीक है ना, वो बस चुप करके रह जाएगी, लेकिन दिल में तो उसके नफरत ही पैदा होगी ना आपके, कि भाई आप जो बातें कर रहे हैं तो वो बस मेरी मर्जी उसकी बेसिस पर ही कर रहे हैं ना, तो वो कहेगी ठीक है भाई अगर मेरे अंदर ताकत होगी मैं तुम्हें अपोज करूंगी, और अगर ताकत नहीं होगी तो मैं ऊपर से अपोज नहीं करूंगी, अंदर से मैं तुम्हारे तुमसे नफरत करूंगी, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं क्या कि दूसरे इंसान जिनके साथ हम जिंदगी गुजारते हैं, चाहे वो बीवी हो चाहे वो हमारे कोई घराने का फर्द हो, हम उनके साथ ऐसे जिंदगी गुजारें कि वो दिल में हमें हमसे नफरत करते हो, राइट, हमारे साथ कराहियत करते हो, ठीक है, हम उनके लिए मुसीबत जान बन चुके हों, ऐसा हम नहीं चाहते, नहीं चाहना चाहिए, बहुत ही बुरे इंसान होंगे अगर हम ऐसा चाहेंगे, ठीक है। तो इस वजह से जब भी कभी मुकालमाबाजी की नौबत आए ना, तो अगर करनी पड़ जाए कोई बहुत अहम बात हो तो दलील के साथ करनी चाहिए, ठीक है। बगैर दलील के बस अपनी मर्जी पूरी करने वाली जब आप तरीका इस्तेमाल करेंगे तो उससे जो है ना, एक तो मुकालमा किसी मंतकी नतीजे तक पहुंचेगा नहीं। अगर दोनों बराबर के हैं, दोनों ही इक्वली पावरफुल हैं, तो फिर वो कभी किसी नतीजे पे आप नहीं पहुंच सकते, कभी भी किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते। लेकिन अगर अगला बंदा कमजोर है तो आप जाहिरी तौर पर गालिब आ जाएंगे, लेकिन ये तरीका काम करने का होता नहीं है और इससे जो है वो मामला बहुत खराब होता है, ठीक है। तो इस वजह से दलील के साथ बात करनी चाहिए, और दलील क्या होती है, एक तो अकली दलील होनी चाहिए कि जो कि दिलो दिमाग को लगने वाली बात, उसको कहते हैं अकली दलील, ठीक है ना। अगला बंदा भी कुछ जैसे कि हबीब नज्जार ने क्या फरमाया, ठीक है, अकली दलील दी ना कि भाई वमा लिया ला अबुदुल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजऊं, कि क्या हुआ मुझे कि मैं उसकी इबादत ना करूं जिसने मुझे तख्लीक किया और उसी की तरफ मुझे लौट के जाना है, ये अकल को लगने वाली बात। और दूसरी बात क्या करी कि मैं उसको छोड़ करके इन बुतों को अपना माबूद बना लूं जो कि मेरी मदद ही नहीं कर सकते, अगर किसी परेशानी में मुब्तला हो जाऊं मेरी मदद नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये अकली दलीलें थी ना कि अगला बंदा भी इससे इनकार नहीं कर सकता, ठीक है। और दूसरी नकली दलील क्या होती है, नकली दलील वो होती है कि अगले बंदे को भी पता हो कि ये जो बात कर रहे हैं ना ये वाकई ऐसे ही है, यानी उसके इल्म में भी हो कि हाँ अल्लाह एक है, अल्लाह ने हमेशा से रसूल भेजे हैं, आखिरत मरने के बाद हमने दोबारा जिंदा होना है, ये बात इंसानों को पहले से पता होती है, जैसे कि हम शुरू में बता चुके हैं, ये रसूल कोई नई बात लेकर के नहीं आते, अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत में, खमीर में तौहीद, आखिरत, रिसालत की जरूरत इनको इंसान की फितरत में डाल के भेजा है। और अंबिया जो है वो बार बार आकर के इन बातों को रिमाइंड करवाते हैं, ठीक है। तो ये नकली दलीलें होती हैं कि पहले से उस बंदे को ये बात पता है, बस आप जो है वो बातें रिमाइंड करवा रहे हैं कि देखो तुम तो ऑलरेडी ये बातें जानते हो ना, तुम्हें तो पहले से ये बातें पता है, तुम तो इनको एडमिट करते हो, एग्री करते हो, तो मैं तुम्हें वही बातें याद दिला रहा हूँ ना, बस तुम्हारी खैरख्वाही की वजह से याद दिला रहा हूँ, ठीक है। वरना मेरा क्या है इसके अंदर, मुझे कौन सा इसके अंदर जो है वो आलू के समोसे मिल जाएंगे, आजकल रमजान चल रहा है लोग समोसे खा रहे हैं, पकौड़े खा रहे हैं, मुझे कौन सा इसके अंदर लड्डू पेड़े मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बात करते हैं ना, तो इससे या तो अगला बंदा कन्विंस हो जाता है, और अगर कन्विंस नहीं होता ना तो फिर कम अज कम अल्लाह ताला की मदद जो है वो आपके साथ हो जाती है, और अगले बंदे के साथ अल्लाह ताला की मदद नहीं होती, फिर किसी ना किसी तरीके से अल्लाह ताला जो है वो उसको फिर मुती बना ही देते हैं, ठीक है। तो कॉन्वर्सेशन के अंदर ये याद रखना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि हर कॉन्वर्सेशन का मतलब हो कि दोनों ही गलत, ठीक है, लेकिन कॉन्वर्सेशन जब हो किसी के साथ तो वो कॉन्वर्सेशन जो है ना अगर आप कर ही रहे हैं تو عقلی اور نقلی دلیل کے ساتھ کریں. عقلی دلیل ہوتی ہے جو کہ دل و دماغ کو لگنے والی بات ہو, جس کو کہ وہ ڈینائی نہ کر سکتا ہو اپنی عقل کی بنیاد پر, ٹھیک ہے. اور نقلی دلیل وہ ہوتی ہے کہ جو کہ اس کے علم میں پہلے سے موجود ہو, جس کو کہ وہ مانتا ہو, ٹھیک ہے, کہ ہاں ان نیک لوگوں نے آ کے یہ بات پہلے سے بتائی ہوئی ہے, اب آپ صرف یہ باتیں ریمائنڈ کروا رہے ہیں, اس کو کہتے ہیں نقلی دلیل, ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر تو ہم اس واقعے کے, اچھا بات یہ ہے کہ یہ جو دعوت و تبلیغ کے بارے میں باتیں لکھی ہیں انہوں نے, تو اس کو اگر آپ اپنے سیلف مطالعے میں تھوڑا لے آئیں تو شاید آپ کو فائدہ ہوگا. بات یہ کہ اس کلاس کے کانٹیکسٹ میں ہم اس بات کو مزید تفصیل سے نہیں پڑھیں گے. تو اب انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم پیج نمبر 379 کے اوپر آیات نمبر 33 سے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات فرمائی ہیں تو ان کا تذکرہ شروع کریں گے. کسی کو اگر کوئی سوال کرنا ہو تو وہ بس ہم کرتے ہیں. ایک تو انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی دوسرے کی بات سننا ہی نہ چاہے, تو اگر کوئی سننا ہی نہ چاہے نا, تو پھر جیسے کہ ان رسولوں نے کہا نا کہ ربنا یعلم انا الیکم مرسلون, کیونکہ ان کو اپنی بات پر یقین تھا کہ وہ سچی بات کر رہے ہیں, دلیل تھی ان کے پاس, عقلی بھی دلیل تھی نقلی دلیل بھی تھی. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ میں خیر خواہی کا معاملہ کر رہا ہوں تمہارے ساتھ, وما علینا الا البلاغ المبین, میرا کام تھا تم تک پہنچا دینا. اب تم اگر سننے کے لیے تیار نہیں ہو تو پھر میں تم پر ہدایت کو چشمہ تو نہیں کر سکتا نا. انلزمکموھا وانتم لھا کارہون, رائٹ. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ہدایت کو تمہارے اوپر تھوپ تو نہیں سکتے نا, تھوپ یعنی ہم تھوپیں گے نہیں, سکتے تو ہیں اللہ تعالیٰ سب کچھ لیکن تھوپیں گے نہیں اگر تم اس سے کراہیت کرتے ہو. تو اس طرح سے اگر کوئی بندہ سننا ہی نہ چاہے نا, تو پھر صبر کر کے نا تھوڑا سا اپنے آپ کو ریٹریٹ کر لینا چاہیے, اور پھر اس فکر میں لگ جانا چاہیے کہ میں کس طریقے سے زیادہ بہتر انداز میں اس تک بات پہنچاؤں. دعائیں کرتے رہنا چاہیے اور اگلی حکمت عملی سوچنی چاہیے, ٹھیک ہے. تو اگر کوئی سننا نہ چاہے تو اس طرح سے دعاؤں پہ آپ لوٹ آئیں اور نیکسٹ حکمت عملی کے اوپر. دلیل کس سے مانگی جائے, دلیل کس سے مانگی جائے کہ کیا مطلب, دلیل مانگنے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کو جو نصیحت کر رہا ہے آپ اس سے دلیل مانگ رہے ہیں, اور دوسری یہ کہ آپ کسی سے دلیل سیکھنے کے بعد پوچھ رہے ہیں. تو آئی ایم ناٹ کلیئر کہ آپ کیا پوچھ رہے ہیں. میں جب تک در خواتین میں کمنٹ پڑھتا ہوں, انسان کو کیسے پتا چلتا ہے اس کا ایمان کتنا کمزور یا مضبوط ہے؟ دیکھیں, ایک انڈیکیشن ایمان کے کمزور یا مضبوط ہونے کی اس کلاس کے اندر بھی ہم نے سامنے رکھی تھی, وہ یہ کہ وہ اپنے آپ کو حقیر سمجھ رہا ہو اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اس کی نگاہوں میں بڑھ رہی, ٹھیک ہے نا. تو یہ سمجھائے نا اس کلاس کے اندر, تو یہ ون آف دا انڈیکیشنز ہے, بڑی امپورٹنٹ انڈیکیشن ہے کہ جس سے پتہ لگتا ہے کہ انسان کا ایمان جو ہے وہ کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے, اوپر جا رہا ہے کہ نیچے جا رہا ہے. اگر دونوں کسی نتیجے پر نہ پہنچے تو پھر, اگر دونوں کسی نتیجے پر نہ پہنچے نا, تو خصوصاً رشتہ داری کے اندر اور میاں بیوی کے تعلق میں تو اور بھی زیادہ, اللہ تعالیٰ نے ہمیں سالس کا کانسیپٹ دیا ہے. سالس, سالس کون ہوتا ہے؟ ایک تھرڈ پرسن ہیومن بینگ, ٹھیک ہے. ایک تھرڈ ہیومن بینگ ایسا ہوتا ہے کہ جس کے اوپر نا یا تو دونوں کو اعتماد ہو, ٹھیک ہے, کہ یہ بات جو ہے وہ اچھی کرتے ہیں, سچ کرتے ہیں, اور یہ ان بائسڈ ہیں, ٹھیک ہے, علم والے ہیں, یا یہ کہ کم از کم دونوں میں سے کسی ایک پر اعتماد, کسی ایک کو اعتماد پر, ٹھیک ہے. تو ایسے سالس کو جو ہے نا پھر ان کے پاس جا کر کے مشورہ کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, یا تو دونوں میں سے ایک جائیں مشورہ کرنے کے لیے, یا سب سے بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ دونوں جائیں, ٹھیک ہے. تو نتیجے پر نہ پہنچنے کا, تو اب ریزالو کرنے کے لیے جو ہے نا یو نیڈ اے آربیٹریٹر, جس کو کہتے ہیں. دونوں مطلب ہیں آپ کے, دلیل کس سے مانگی جائے. جو آپ کے سامنے آ کر کے کوئی ایسی بات کہے کہ جو کہ آپ کے لیے بالکل نئی ہو, آپ اس سے یعنی فیملیئر نہ ہو, ٹھیک ہے نا, تو اس سے جو ہے وہ اس بات کی دلیل مانگنی چاہیے. جیسے کہ حبیب نجار کے پاس جب یہ دونوں رسول پہنچے نا, تو حبیب نجار جو کہ بالکل فرسٹ انکاؤنٹر تھا, ٹھیک ہے, تو انہوں نے جو باتیں کری حبیب نجار کو امیڈیٹلی ان باتوں کا پہلے سے کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا, تو حبیب نجار نے ان سے دلیل مانگی کہ بھئی کیا دلیل ہے کہ تم جو بات کہہ رہے ہو صحیح ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی تمہاری بیماری دور کرنے کے لیے ہم اپنے رب سے دعا کریں گے, ٹھیک ہے. تو ایسی سچویشن میں آپ दलील मांगते हैं कि जी आप जो बात कह रहे हैं तो पीछे से कोई इसका दलील भी दें, जब आप उस बंदे से वाकिफ नहीं हो। ठीक है, जब आप उससे वाकिफ हो जाते हैं ना कि जी वो सच्चा है, सादिक है, अमीन है, जैसे नबी अलैहिस्सलाम सादिक और अमीन थे, तो नबी अलैहिस्सलाम से जो यानी यू आर ऑलरेडी फेमिलियर, मुशरिकीन मक्का की बात हो रही है कि मुशरिकीन मक्का जो है नबी अलैहिस्सलाम को बचपन से देख रहे थे, सादिक और अमीन जानते थे, ठीक है, मानते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैरेक्टर को, स्पॉटलेस कैरेक्टर था, तो इन लोगों के लिए मजीद दलील मांगने की इजाजत नहीं। ठीक है, इन्होंने जो मजीद दलीलें मांगी, आपको पता है क्या हुआ उसके बाद? उन दलीलों से इनको फायदा नहीं हुआ। इन्होंने मौजों का मुतालबा किया ना नबी अलैहिस्सलाम से, तो इनको उन मौजों से फायदा हुआ। नबी अलैहिस्सलाम ने शक्ल कमर कर दिया, चांद के दो टुकड़े, माशाल्लाह, उससे बड़ा और क्या मौजा चाहिए भाई। लेकिन क्या हुआ उससे, क्या ये काफिर मुसलमान नहीं? नहीं मुसलमान। क्यों नहीं मुसलमान हुए? इसलिए कि इनके पास दलील पहले से मौजूद थी, और वो कौन सी दलील थी? सादिक और अमीन वाली दलील थी इनके पास। इनको चाहिए था कि उसी दलील के ऊपर इक्तफा करते और मान लेते, ठीक है, मजीद दलीलें मांगने की इजाजत नहीं। तो फिर मजीद दलीलें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौजे दिखाई भी, किन लोगों को दिखाए? ज्यादातर ऐसे वाकयात मेरे जहन में ऐसे ही हैं कि जो कि बाहर से लोग आते थे ना, तो बाहर से आने वाले लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ ऐसे मौजे भी दिखा दिया करते थे जिनकी बुनियाद पर फिर वो लोग मुसलमान, ठीक है, क्योंकि वो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पले बड़े नहीं थे, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले से बहुत अच्छी तरह नहीं जानते थे, तो उनके साथ मौजों वाला मामला हुआ। ठीक है, अच्छा, बाकी ये कि दूसरा आप जो कुछ कह रहे थे कि दलील किसे मांगी जाए, यानी ये क्या कहा था मैंने, क्या दलील सीखना, नसीहत, मैं खुद अपनी बात को भूल गया, सीखना, मेरे जहन में बिल्कुल बात नहीं आ रही, आप थोड़ा इसको अगर ज्यादा क्लियर करके लिख दें तो इंशाल्लाह कल कोशिश करेंगे जवाब देने की। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम क्लास रोकते हैं, अस्सलाम वालेकुम।